लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा फ्रांसिस ने 1 दिसंबर रविवार को संत पेतरुस महागिरजाघर के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना हेतु जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, prima domenica del tempo di Avvento, inizia un nuovo anno liturgico. In queste 4 settimane di Avvento, la liturgia ci conduce a celebrare il Natale di Gesù.
Priye bhaiyo evam behno, suprabhat. Aaj hum agman ke pehle ravivar mein pravesh karte hue कलिसियाई पूजन विधि नई वार्षिक कालचक्र की शुरुआत करते हैं। आगमन के चारों रविवार हमें यीशु ख्रीस्त के जन्म की यादगारी मनाने हेतु तैयार करते हैं। यह हमें इस बात की याद दिलाती है कि वे हमारे रोज दिन के जीवन में आते हैं और वे दुनिया के अंत में महिमा के साथ आएंगे। यह हमें निश्चित रूप से अपने भविष्य को विश्वास भरी निगाहों से देखने में मदद करता है, जैसे कि नबी इसायस हमें अपनी प्रेरणा भरी बातों से निमंत्रण देते और हमें आगमन की यात्रा में ले चलते हैं। आज के पहले पाठ में नबी इसायस भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, दुनिया के अंत में ईश्वर का मंदिर पहाड़ों से ऊपर उठाया जाएगा और वह पहाड़ियों से ऊंचा होगा और सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। ईश्वर का मंदिर यरूशलेम को हम इस भांति सभी लोगों के मिलन स्थल स्वरूप परिवर्तित होता हुआ पाते हैं। ईश पुत्र के दुनिया में आने के बाद हम स्वयं यीशु को इस सच्चे मंदिर के रहस्य को प्रकट करते हुए सुनते हैं। अतः नबी इसायस की भविष्यवाणी अपने में एक दिव्य प्रतिज्ञा है जो हमें अपने में तीर्थयात्रियों के मनोभाव से भर देता और हम अपने को यीशु ख्रिस्त से मिलन की ओर अग्रसर होता हुआ पाते हैं, जो हमारे जीवन के अर्थ और इतिहास की चरम है। कितने ही लोग हैं जो न्याय के भूखे और प्यासे हैं, जो केवल यीशु के मार्ग में चलते हुए इसके अर्थ को समझ पाएंगे। वहीं बहुत से लोग और सामाजिक समुदाय जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बुराई और पापों के मार्ग में चलते हैं, जो युद्धों और लड़ाई झगड़ों का कारण बनती है। आगमन वह सही समय है जहां हम यीशु का स्वागत करने हेतु अपने को तैयार करते, जो हमारे लिए शांति के संदेश वाहक बनकर आते और हमें ईश्वर का मार्ग दिखलाते हैं। संत पापा ने कहा,
Jesus ci esorta ad essere pronti per la sua venuta. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
आज का सुसमाचार हमें तैयार रहने हेतु निमंत्रण देता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु कब आएंगे। जागते रहने का अर्थ भौतिक रूप में अपनी आंखों को खुला रखने से नहीं है, वरन अपने हृदय की स्वतंत्रता में सही दिशा की ओर आगे बढ़ना है, अर्थात अपने को उपहार स्वरूप देने की चाह रखना और सेवा करना है। हमारे लिए जागते रहने का अर्थ यही है। नींद जिससे हमें जागने हेतु आह्वान किया जा रहा है, वह है अपनी उदासीनता दिखावे, दूसरों से सच्चे संबंध स्थापित करने की हमारी अयोग्यता, अपने में परित्यक्त अकेले और अपने बीमार भाई बहनों हेतु अपने को नहीं दे पाने की स्थिति से ऊपर उठने का आह्वान। यीशु के आने की प्रतीक्षा हमें अपनी निष्ठा में बने रहते हुए जागने का एक निमंत्रण है। यह हमें ईश्वर के कार्यों से अपने को आश्चर्यचकित होने देते हुए अपने को उन्हें समर्पित करने की मांग करता है। संत पापा ने कहा,
विजिलांसा significa anche concretamente essere attenti al nostro prossimo in difficoltà.
जागते रहने का अर्थ हमारे लिए ठोस रूप से अपने पड़ोसियों के प्रति सजग रहना भी हो सकता है, जो कठिन परिस्थिति में है। उनकी जरूरत हमें चुनौती प्रदान करे, जहां हम उनके द्वारा सहायता की मांग हेतु प्रतीक्षा किए बिना सेवा हेतु आगे बढ़ें, जैसे कि ईश्वर हमारे साथ करते हैं। कुमारी मरियम, जो आशा में सदा सजग रहें, हमारी इस यात्रा में मदद करें, जिससे हम अपनी निगाहों को ईश्वर के पर्वत यीशु ख्रीस्त की ओर बनाए रखें, जो अपनी ओर सारी मानव जाति को आकर्षित करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nosque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने सभों का अभिवादन करते हुए कहा कि वे इराक की वर्तमान परिस्थिति से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि आए दिनों प्रदर्शनकारियों को घोर यंत्रणाओं का शिकार होना पड़ा है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मैं घायलों और मृतकों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उनके परिवारों और पूरे इराक वासियों के लिए अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उनके ऊपर ईश्वरीय शांति और स्थायित्व की कामना करता हूँ। परिवार और जीवन हेतु लोक धर्मियों के संघ ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय युवा सलाहकारिणी समिति की स्थापना की है, जिसमें विभिन्न भूभागीय और कलिसियाई पृष्ठभूमि के 20 युवक शामिल हैं। यह युवाओं को समर्पित विगत साल हुए धर्म सभा की मांगों का एक ठोस प्रतिउत्तर है। इस संघ का कार्य युवाओं के जीवन दर्शन को समझते हुए युवा प्रेरिताई को उनकी प्राथमिकता के आधार पर करना है। इतना कहने के बाद संत पापा ने रोम और विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया, विशेष रूप से पोलैंड और बुखारेस्ट बच्चों के संगीत दलों का। उन्होंने जूलिया नोवा लीदो, नेतुनो और जेस्सी समुदाय के साथ साथ कावारेज़े तीर्थयात्रियों, जो अपने संगीत दल सेराफिम और इटली के रोमानिया संघ का अभिवादन किया। संत पापा ने कल दोपहर को ग्रेको की भेंट की, जहां संत फ्रांसिस ने यीशु की जन चरणी का निर्माण पहली बार किया था। वहां उन्होंने चरणी के अर्थ और उसके महत्व के एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। संत पापा ने कहा,
Il presepe è un segno semplice, un segno mirabile della fede cristiana.
चरणी ख्रिस्तीय विश्वास की एक अद्भुत निशानी है। यह एक छोटा पत्र है जो हमें यीशु जन्म की तैयारी हेतु मदद करेगा। अपनी तैयारी की इस यात्रा हेतु उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का अनुरोध किया। अंत में उन्होंने सबों को आगमन की यात्रा हेतु शुभकामनाएं अर्पित की और अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए सबों को रविवार ये शुभकामनाएं अर्पित की।
Buon pranzo e arrivederci.
जीवन मेरा लेकर मैं अर्पण करने चरणों में ग्रहण करो,
ग्रहण करो बलिदान मेरा।
यीशु मेरे ईसा प्रभुवर, दुखों में मेरा हाथ थामे रखना, मेरे जीवन में तू सदा तेरा प्यार बनाए रखना। आस ले आया चरणों में ग्रहण करो,
ग्रहण करो बलिदान मेरा।
तेरी शक्ति से तू प्रबल सदा ही रखना, ताकि मन ये प्यार तेरा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने आगमन काल में प्रवेश करते हुए सभी विश्वासियों का आह्वान किया है कि वे प्रभु के स्वागत हेतु अपने आप को तैयार करें। उन्होंने रविवार को 3 ट्वीट प्रकाशित कर अपना संदेश जारी किया। उन्होंने पहले संदेश में कहा, आज के सुसमाचार में यीशु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम उनके आगमन के लिए तैयार रहें। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। जागते रहने का अर्थ है दान करने और सेवा करने के लिए तत्पर रहना, पड़ोसियों की कठिनाइयों में उनका ख्याल रखना। दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने आगमन काल का अर्थ बतलाते हुए कहा, आगमन शब्द का अर्थ है आना, प्रभु आ रहे हैं। यही हमारी आशा का मूल कारण है। ईश्वर की सहानुभूति की निश्चितता है जो दुनिया की कठिनाइयों के बीच आते हैं, जो शब्दों की नहीं बल्कि हमारे बीच उनकी उपस्थिति की सहानुभूति है। रविवार को प्रसिद्ध तीसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने परिवारों में चरनी बनाने का प्रोत्साहन दिया। परिवारों में चरनी बनाने की प्रथा पर संत पापा ने एक पत्र प्रकाशित कर विश्वासियों का आह्वान किया है कि वे अपनी दिल रूपी चरनी को तैयार करने के साथ साथ परिवार में भी चरनी तैयार करें। उन्होंने कहा, इस पत्र के द्वारा मैं ख्रिस्त जयंती के लिए चरनी बनाने की सुंदर पारिवारिक प्रथा को प्रोत्साहन देता हूँ। साथ ही कार्यस्थल, स्कूल, अस्पताल, कैदखानों और शहर के चौराहों पर भी चरनी बनाने की परंपरा को बढ़ावा देता हूँ। संत पापा फ्रांसिस ने चरनी के महत्व और अर्थ पर एक प्रेरित पत्र प्रकाशित किया है। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर रविवार को इताली शहर ग्रेजो की यात्रा के दौरान की। ग्रेजो एक पहाड़ी गांव है जहां संत फ्रांसिस असीसी ने अपनी पहली चरनी 1223 में यीशु की यादगारी में निर्मित की थी। संत पापा ने रविवार को इस गांव का दौरा कर अपने प्रेरित पत्र एडमिराबिले सेनियम का उद्घाटन किया। प्रेरित पत्र के लातिनी शीर्षक का अर्थ है क्रिसमस चरनी का एक अद्भुत दृश्य जो हमेशा विस्मित एवं आश्चर्यचकित करता है। यीशु के जन्म का चित्रण अपने आप में ईश्वर के पुत्र के शरीर धारण का सहज और आनंदमय घोषणा है। संत पापा ने पत्र में लिखा है कि चरनी का दृश्य एक जीवित सुसमाचार है जो पौत्र धर्म ग्रंथ के पृष्ठों से प्रेरित है। क्रिसमस की कहानी पर चिंतन करना आध्यात्मिक यात्रा है जो ईश्वर की विनम्रता से शुरू होती, जो मानव बन गए ताकि सभी स्त्री और पुरुषों से मुलाकात कर सकें। अतः उनका प्रेम महान है कि वे हम में से एक बन गए ताकि हम भी उनके समान बन सकें। संत पापा की आशा है कि यह प्रेरित पत्र पारिवारिक परंपरा को प्रोत्साहन देगा, किंतु यह कार्यस्थलों, स्कूलों, अस्पतालों, कैदखानों
और शहर के चौराहों पर भी चरने निर्माण की प्रथा को बढ़ावा देगा। चरने निर्माण में काल्पनिक शक्ति के प्रयोग एवं रचनात्मकता की सराहना करते हुए संत पापा ने लिखा है कि उनकी आशा है कि यह प्रथा कभी न खोए। उन्होंने कहा कि जहां इसे बनाने की प्रथा धूमिल हो रही है, वहां इसे पुनः जागृत किया जाए। संत पापा ने चरने के उद्गम की याद करते हुए लिखा है कि इसका उद्गम सुसमाचार में है। इस दुनिया में आने के लिए ईश पुत्र उस जगह पर लेटे जहां पशुओं को चारा दिया जाता है। सूखी घास उनका पहला बिछावन बन गया, जो बाद में स्वयं प्रकट किए कि वे स्वर्ग की उतरी हुई रोटी हैं। चरनी यीशु के जीवन के कई रहस्यों पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करता है और हमारे दैनिक जीवन में उन्हें हमारे नजदीक लाता है। संत पापा फ्रांसिस हमें इताली शहर ग्रेचो ले जाते हैं, जहां 1223 में संत फ्रांसिस असीसी ने दौरा किया था। उन्होंने वहां एक गुफा देखा जो उन्हें बेतलेहम की ग्रामीण इलाके की याद दिलाई। 25 दिसंबर को धर्म बंधुओं और गांव के लोगों ने मिलकर फूलों और मशालों को सजाया। जब फ्रांसिस वहां पहुंचे, तब उन्होंने चरनी को सूखी घास से भरी बैल तथा गधों को पाया। एक पुरोहित ने चरनी के पास कृष्त्याग अर्पित किया एवं ईश्वर के पुत्र के शरीर धारण और कृष्त्याग के बीच संबंध पर प्रकाश डाला। इस तरह इस परंपरा की शुरुआत हुई। गुफा के नजदीक खुशी से एक साथ जमा होना, जिसमें सच्ची घटना और उनके रहस्यों में सहभागी होने में ज्यादा अंतर नहीं था। संत फ्रांसिस असीसी ने सुसमाचार प्रचार के महान कार्य हेतु साधारण चिन्हों को अपनाया, जिनकी शिक्षा आज भी जारी है, जो हमें साधारण किंतु हमारे विश्वास की सुंदरता को व्यक्त करने की सच्ची शिक्षा प्रदान करती है। रोम में रहने वाले कोंगो वासियों की आध्यात्मिक देखभाल हेतु पुरोहितों की नियुक्ति 25 वर्षों पहले की गई थी। इस वर्षगांठ को मनाने के लिए संत पापा फ्रांसिस ने कोंगो के रीति अनुसार संत पेत्रुस महागिरजा घर में कृष्त्याग अर्पित किया। रोम के कोंगो समुदाय ने बड़े उत्साह के साथ संत पापा के कृष्त्याग में भाग लिया। कृष्त्याग में संत पापा ने कोंगो में शांति हेतु प्रार्थना की और उन्होंने उन लोगों का विरोध किया जो हथियार व्यापार के द्वारा अपने आप को धनी बनाते हैं। यह आगमन का पहला रविवार था। अपने उपदेश में संत पापा फ्रांसिस ने आने की क्रिया पर प्रकाश डाला। संत पापा ने कहा कि आने की क्रिया आज न केवल ईश्वर के लिए बल्कि हमारे लिए भी है। पहले पाठ में ईसाया नबी के ग्रंथ में लोगों द्वारा प्रभु के दिव्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। नबी ईसाया ईश्वर के निमंत्रण को प्रस्तुत करते हैं, जो कहते हैं, आओ क्योंकि मेरे घर में हर एक व्यक्ति के लिए जगह है, क्योंकि मेरे हृदय में केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जगह है। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 30 नवंबर को वेटिकन में 6 से 16 साल के 3500 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों से मुलाकात की, जिन्होंने रोम में बच्चों की मैं समर्थ हूँ वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया। 26 से 30 नवंबर तक बच्चों ने वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया, जो सबसे बड़ा अंतरधार्मिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। सम्मेलन में कुल 40 देशों के बच्चों ने भाग लिया। इटली के कैथोलिक स्कूलों के संघ फिडाल द्वारा मैं समर्थ हूँ परियोजना संत पापा फ्रांसिस के प्रेरित विश्व पत्र लाउदातो सी द्वारा प्रेरित है। संत पापा ने उन्हें संबोधित करते हुए कार्यों के प्रति उनके दैनिक समर्पण की तुलना मोजाइक कृति से की। उन्होंने कहा, कई छोटे छोटे कार्यों को एक साथ करने के द्वारा निर्मित सुंदरता मुझे मोजाइक कलाकृति की याद दिलाती है, जिसमें एक तस्वीर का निर्माण करने के लिए कई टुकड़ों को एक साथ लाया जाता है। पत्थर के इन छोटे टुकड़ों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, किंतु एक साथ मिलकर वे एक अत्यंत मनोरम दृश्य उत्पन्न करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।